श्रीमद् भागवतम स्कंद तीसरा अध्याय 22 कंदमुनि देवाहुति का परिणय और श्लोक संख्या 12 तद् रतिच्छा द्विज अग्र्य इमाम श्रद्धयो उपरतां मया सर्वात्म अनरूपां ते गृहमेदिषु कर्मसु। तत्प्रतिष्य द्विजाग्रे मां श्रद्धयो अपहृतां मया सर्वात्मना अनुरूपम् ते गृहमेदिषु कर्मसु। तत्प्रतिष्य द्विजाग्रे मां श्रद्धयो अपहृतां मया सर्वात्मना अनुरूपां ते गृहमेदिषु कर्मसु। तत्प्रतिच्छ द्विजाग्रे मां श्रद्धयो उपहृतां मया सर्वात्मना अनुरूपां ते गृहमेदिषु कर्मसु। वाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमोदी अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। अतः हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप इसे स्वीकार करें, क्योंकि मैं इसे श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर रहा हूं। यह सभी प्रकार से आपकी पत्नी होने और आपकी गृहस्थी के कार्यों को चलाने में सर्वथा योग्य है। तात्पर्य गृहमेदिषु कर्मसु शब्दों का अर्थ है गृहस्थोचित कार्यों में, या एक अन्य शब्द भी प्रयुक्त होता है सर्वात्मना अनुरूपां। इसका सारांश यह है कि पत्नी को आयु चरित्र तथा गुणों में न केवल पति के समान होना चाहिए, किंतु गृहस्थी के कार्यों में भी सहायक होना चाहिए। मनुष्य का गृहस्थोचित कार्य केवल इंद्रिय तृप्ति ही नहीं, वरन पत्नी संतानों के साथ रहते हुए आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना है। जो ऐसा नहीं करता वह गृहस्थ नहीं वरन गृहमेधी है। संस्कृत साहित्य में दो शब्द प्रयुक्त मिलते हैं, एक है गृहस्थ और दूसरा गृहमेधी है। गृहस्थ एक आश्रम भी है, किंतु यदि कोई गृहस्थ होकर केवल इंद्रियों की तृष्टि करता है तो वह गृहमेधी है। गृहमेधी के लिए पत्नी बनाने का अर्थ इंद्रियों की तुष्टि करना है, किंतु गृहस्थ के लिए योग्य पत्नी आध्यात्मिक कार्यों में उन्नति के लिए सब प्रकार से सहायक के रूप में होती है। पत्नी का कर्तव्य है कि वह गृहस्थी के सारे कार्यों को संभाले, न कि पति से स्पर्धा करे। पत्नी सहायता करने के निमित्त होती है, किंतु वह अपने पति की तब तक सहायता नहीं कर सकती जब तक वह आयुशील तथा गुणों में उसके समान न हो। अखिल मंडल आकारा व्याप्ते अनुचराचरम तत्पाद रचितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्प्रतिष्ठत द्विजाग्रे मां श्रद्धयो उपरतां मया सर्वात्मना अनुरूपां ते गृहमेदिषु कर्मसु। अतः है ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब इसे स्वीकार करें, क्योंकि मैं इसे श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर रहा हूं। यह सभी प्रकार से आपकी पत्नी होने और आपके गृहस्थी के कार्यों को चलाने में सर्वथा योग्य है। तो ये श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद है, जहां से लीलाओं की शुरुआत हो जाती है। पहले स्कंद में तो हम देखते हैं कि भक्ति योग की महिमा बताते हैं, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में। तत्पश्चात फिर वो योग किस प्रकार से अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति स्वीकार सकता है, इसका उदाहरण वो नारद के उपाख्यान से देते हैं। नारद हालांकि एक शूद्राणी का पुत्र था, लेकिन फिर भी उचित साधुओं का संग और उनका उच्चिष्ट प्राप्त करने से वो भी भगवान को प्राप्त करता है। तत्पश्चात फिर हम किस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए या उनके पास क्या मांगना चाहिए, यह हम महारानी कुंती से सीखते हैं उनकी प्रार्थनाओं से। और एक जीवन की सार्थकता क्या है इस भक्ति में, चाहे किसी भी वर्ण या आश्रम में व्यक्ति क्यों न रहे, अपने आप को वो किस प्रकार से भगवत भावनामय बना सकता है, इसका उदाहरण हम भीष्म से देखते हैं। पितामह भीष्म, वे कोई सन्यासी नहीं थे या पूरे संसार का परित्याग करके कोई वानप्रस्थी नहीं थे, एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। और केवल कुछ सालों तक नहीं बल्कि सैकड़ों सालों तक उन्होंने वो धरोहर अपने पास रखी और उसे पूरी तरह से संभाल भी रखी। रजोगुण के वातावरण में रह के सतोगुण को संभालना ये सर्कस करने के समान है। और पितामह भीष्म ने पूरी जीवन और देखा है कि किस प्रकार से उस स्थिति में रहकर भी हम अपनी भावना को कृष्ण में बना सकते हैं। और जब कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावना में होकर अपने विहित कर्तव्यों का पालन करता है तो उसकी अंतिम स्थिति क्या है, ये उनके मृत्यु से हम देखते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान पांडवों के शिविर में थे और भीष्मदेव के प्राण त्याग करने का जब समय आया तो उस समय वे सोच रहे थे कि मुझे जाना पड़ेगा। अभी युधिष्ठिर भगवान के शिविर में आया तो देखा कि भगवान बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं, महाभारत में वर्णन आता। तो युधिष्ठिर सोचते कि अरे सारे योगी जिसके चरण कमल पर ध्यान करते हैं ये किसके ऊपर ध्यान कर रहा है। हमारी स्थिति तो ठीक है कि भाई हम तुमको या तुम्हारे चरणों का ध्यान करते हैं या तुम्हारे सुंदर अंगों का ध्यान करते हैं, लेकिन आपको किसकी, आपको क्या जरूरत पड़ेगी जो आप स्वयं ध्यान कर रहे हो। तो बोले मैं ध्यान कर रहा हूं मेरे भक्त का कि जिसका मन पूरी तरह से मुझ में समर्पित है। तो बोले ऐसा कौन व्यक्ति है, तो बोले चलो मिलने चलते क्योंकि वो व्यक्ति आज अपना शरीर त्यागने वाला और अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है मैं उसके सामने रहता हूं, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो सारे पांडवों को लेके भगवान भीष्मदेव के सामने आते हैं। तो पहले स्कंद में ही हम देखते हैं कि भगवान हमें प्रक्रिया भी दे रहे हैं, उसको किस प्रकार से अपने जीवन में अपनाना है वो भी सिखा रहे हैं और उस प्रक्रिया का अंत में परिणाम क्या है वो भी बता रहे। यानी जो हमारा शास्त्र बता रहे ये केवल मिथ्स नहीं है या ऐसी कहीं सुनी कथाएं नहीं है बल्कि इनके प्रमाण है और हर एक व्यक्ति के जीवन में उसकी आवश्यकता है। फिर आगे जाके दूसरे स्कंद में हम देखते हैं कि भगवान इस पूरे धरा धरती या पूरे ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में बताते हैं। कई बार हम जब भागवतम का अभ्यास करते हैं तो प्रयास यही रहता है लोगों का कि सीधा लीलाएं पढ़े, लीलाओं में रुचि रहती है, लेकिन उन लीलाओं को समझने के लिए वो लीला का किरदार जो है या जो करता है उस व्यक्ति को समझना आवश्यक है ना। उस व्यक्ति को नहीं समझोगे तब तक उनकी लीलाओं को क्या समझ पाओगे, नहीं तो फिर उन लीलाओं के बारे में मन में संदेह आएगा, अरे ये ऐसा ही क्यों करता है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन वो समझने के लिए पहले उस व्यक्ति की शक्तियों को जानना पड़ेगा, और इसीलिए भगवान अपनी पहले बहिरंगा शक्ति को पहले समझो बोलते हैं, और द्वितीय स्कंद में पूरी तरह से इस सर्ग और विसर्ग के बारे में बताते हैं कि सृष्टि कैसे हुई, क्या है इस सृष्टि का स्रोत, किन घटकों से यह बनी है, कौन कौन से तत्व है इसमें, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन तत्वों से यह शरीर बना है अगर उन तत्वों के बारे में अगर हम जान नहीं पाए, अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम इन तत्वों से परे हैं, तब तक भगवान की उन लीलाओं को समझना कठिन। और इसलिए पूरे द्वितीय स्कंद में भगवान इस सृष्टि के बारे में बताते हैं, और द्वितीय स्कंद से सुखदेव गोस्वामी भगवान के अलग अलग लीलाओं का वर्णन करना शुरू करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब तक ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता है विशेष करके इस भौतिक जगत के बारे में, तब तक आध्यात्मिक जगत की चीजों को समझना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए महाप्रभु भी कहते हैं कि सिद्धांत बलिया सिद्धे ना करी आलस, जब सिद्धांत की बात होती है तब मन में आलस नहीं होना चाहिए, अगर आलस हो नींद आए तो फिर सोया सो सोया माया में खोया, तो फिर यहां पे भी हम देखते हैं पहले ही आख्यान शुरू होता है कपिल देव जी का, भगवान कपिल जिन्होंने सांख्य योग दिया, और सांख्य योग क्या है, प्रभुपाद कहते हैं एनालिटिकल स्टडी ऑफ होल यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड का पृथककरण करके किया हुआ अभ्यास, और फिर वहीं पे शुरुआत होती है। सबसे पहले अगर वो कुछ समझा रहे तो गृहस्थ धर्म के बारे में समझा रहे हैं आप इस अख्यान में, कि किस प्रकार से गृहस्थ को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्ण मुनि एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, कई वर्षों तक एक प्रजापति होने के कारण कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या भी की थी, ब्रह्मा के पुत्र थे, तो उनके जीवन से या उनके इस कार्य से हम ये समझ सकते हैं कि अगर व्यक्ति को प्रजोत्पादन करना है या विवाह करना है तो भी तपस्या करनी आवश्यक है। तपस्या मन शुद्ध थे, तपस्या से मन शुद्ध होता है, और अगर मन शुद्ध हो तो आपके विचार शुद्ध होंगे, और विचार शुद्ध हो तो कार्य और फिर परिणाम शुद्ध होते हैं। तो जब उनकी इच्छा हुई विवाह करने की, तो ऐसे नहीं कि ढूंढते हुए घूमने शुरू किया, चलो अभी मुझे बीवी ढूंढना है, वो बैठे और भगवान श्री विष्णु की उन्होंने तपस्या शुरू की, तो भगवान स्वयं प्रकट हुए उनके सामने, बोले ठीक है तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और तब भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, और भगवान ब्रह्मा जी ने महाराज इनको भेजा उनके पास, स्वयं भू मनु जो पूरे ब्रह्मांड के राजा थे उस समय, और वे कहां पे आए, अपनी कन्या को लेके, देवाहुति को लेके, कर्णमुनि के पास। क्या था अगर मटेरियली देखा जाए, व्यवहार के तौर पे अगर देखा जाए, जैसे कि आजकल लोग सोचते हैं, उस समय देखा जाए तो कर्णमुनि के पास क्या था, एक कृश शरीर जो तपस्या से पूरा कृश हो गया था, ब्रह्म तेज था, धन तो कुछ नहीं था क्योंकि पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे, और फिर भी पूरे ब्रह्मांड का जो राजा है वो अपनी पुत्री को लेके आया वहां पे, और यहां पे कह रहा है कि ये आपके लिए क्या है, सर्वात्मना अनुरूपम, सभी प्रकार से आपका गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए यह अनुरूप है। कोई सोच सकता है पिता ऐसे आजकल के जमाने में, जो लड़की पूरे महलों में पली है, और ऐसा महल नहीं, कहा जाता था वो जब अपने महल के छत पे गेंद से खेलती थी तो देवताएं देवता लोग अपने अपने विमानों में बैठकर उसको देखने के लिए आते थे और उसके सुंदर रूप से मोहित होकर अपने विमानों से गिर पड़ते थे जमीन पर। इतनी सुंदर थी वो और इतनी कोमल अंगी थी। और उसको एक किसको प्रदान कर रहे, एक जंगल में बैठे हुए तपस्वी को, और ऊपर से क्या बता रहे हैं, यह आपके लिए अनुरूप है। जिसने जिंदगी में कभी बिना चप्पल डाले कहीं घूमे नहीं है, वो अभी जंगल में ये साधु के साथ रहेगी और बोलते कि आपके लिए अनुरूप है। कैसे जज किया है, कैसे किस प्रकार से परे ये किया है? ऐसी क्या चीज उन्होंने देखी? तो शास्त्र बता रहा है। और माता रुक्मिणी देवी जो भगवान को पत्र लिखती है कि आप आके मुझे उठा कर लेके जाओ, तो उसमें भी वो बताती है कि किसी भी स्त्री को अगर अपना पति चुनना है या किसी पिता को अपने पुत्री के लिए पति ढूंढना है तो उसको क्या देखना चाहिए। सात चीजें बताइए कि ये अपने लिए क्या बोलते, कसौटी है या चेकलिस्ट है। अगर ये सब चीजें उस व्यक्ति में हो तो व्यक्ति आपके पुत्री के लिए अनुरूप है, उसको आप आपकी पुत्री दे सकते। तो यहां पे माता बताती है रुक्मिणी, विद्या वयो द्रविणम धाम अभिरात्म तुल्यम कुलशील रूप। एक तो सबसे पहले उस व्यक्ति का कुल देखना चाहिए, किस कुल में पैदा हुआ है, नहीं तो फिर वर्ण संकर हो जाएगा। इसलिए वो उचित कुल में व्यक्ति होना चाहिए। फिर बताते रूप, सॉरी शील। कुल के बाद दूसरा चेकलिस्ट का आइटम है वो है शील, यानी चरित्र। उसका चरित्र कैसा है? फिर बताया जाता है कि रूप, वो व्यक्ति दिखने में कैसा है। कुल, शील, रूप, फिर विद्या, कितना पढ़ा लिखा है, कौन कौन सी विद्याओं का ज्ञाता है। फिर वय, आयु, उसकी आयु क्या है। मनुस्मृति में बताया गया है कि कम से कम 7 साल का तो डिफरेंस होना चाहिए पुत्र वर और वधु में, कि उसके कारण दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है। और स्वाभाविक रूप से स्त्री में उस पुरुष के प्रति सेवा का भाव उत्पन्न होता है। इसलिए कहा गया 7, 14, 21 ये उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए विवाह के लिए। फिर बताते हैं द्रवीण, धन कितना है उसके पास, धान घर है क्या, वो देखना। फिर और उसका प्रभाव, समाज पे उसका कितना प्रभाव है, क्या वो अपने गुणों से दूसरे को प्रभावित कर सकता है। अगर ये सब चीजें उस व्यक्ति के पास हो और वही गुण अपने पुत्री में हो तो उनको देना चाहिए, तब उसको कहा जाता है कि सर्वार्पण अनुरूप, सभी प्रकार से वो अनुरूप जोड़ी होती है गृहस्थ धर्म का पालन। अगर ना हो तो फिर वो प्रपंच हो जाता है, फिर प्रचंड भुगतना ही पड़ता है फिर दोनों को। और जैसे कि प्रभुपाद यहां पर बताते हैं कि गृह मेदिशु कर्मसु, गृहस्थोचित कार्यों में, अभी गृहस्थोचित कार्य कौन से है, गृहस्थ बना है तो गृहस्थोचित कार्य क्या है, प्रभुपाद यहां बताते हैं कि गृहस्थ को आश्रम कहा गया है। गृहस्थ ये एक भी आश्रम है, और आश्रम इस संस्कृत शब्द का अर्थ है कि वो स्थान जहां पे व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करता है, चाहे फिर वो ब्रह्मचर्य आश्रम हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या संन्यास हो। हर एक व्यक्ति के गुण विशेषणों के अनुसार उनको ये आश्रम दिए गए। तो गृहस्थ को अपना जीवन अगर आश्रम जैसा बनाना है तो फिर हमारे शास्त्रों में बहुत सारे वर्णन किए गए हैं, बहुत सारे विधि विधान नियम यम विधि निषेध सारे बताए गए। और विशेष करके जिस गौड़ीय संप्रदाय में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने षटक्रिया सार दीपिका नाम का एक ग्रंथ लिखा है कि जिसमें गृहस्थ आश्रम में रह के किस प्रकार से हमारे कार्यों को हमें संपन्न करना है उसको पूरी तरह से मार्गदर्शन किया है। और फिर हरि भक्ति विलास है जो गोपाल भट्ट गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों ने लिखा हुआ है, जिसमें सारे आश्रमों में चाहे वो गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, और जिसे वैष्णव बनना है उसके आचरण किस प्रकार से होने चाहिए उसका पूरी तरह से मार्गदर्शन इन दो ग्रंथों में किया है। तो प्रभुपाद यहां में बताते हैं कि गृहस्थ एक आश्रम भी है, किंतु यदि कोई गृहस्थ होकर केवल इंद्रियों की तुष्टि करता है तो वह गृह मेदी है। तो अभी यहां पे ये जो शब्द है कि इंद्रियों की तुष्टि करता है, इसको हमें समझ के लेना पड़ेगा कि क्या है इंद्रियों की तुष्टि करना है। क्या कोई भी कार्य जिसके केंद्र बिंदु भगवान श्री कृष्ण नहीं है वो इंद्र तृप्ति हो जाता। महाप्रभु कहते हैं आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारवलिका कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा प्रेम धरेना। तो ऐसा कोई भी कार्य या कोई भी विचार जो हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं निर्माण करता और जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित कर लेता है वो हमारी इंद्रिय तृप्ति का कारण बन जाता है और उसको ही काम कहा गया। तो ऐसा कोई भी कार्य तो उसकी चेकलिस्ट हमें खुद ही देखना पड़ेगा कि बाबा ये कार्य करने से मैं भगवान को याद कर रहा हूं, अगर नहीं कर रहा हूं तो ये काम ही, चाहे वो भगवान को श्रृंगार करना ही क्यों ना हो। भगवान को श्रृंगार कर लेकिन मन में सोच रहे वो क्या बढ़िया बना रहा हूं मैं आज, वो गवाह करनी चाहिए, पूछनी चाहिए कि किसने ड्रेसिंग किया है। बाह्य रूप से देखा जाए तो भगवान का श्रृंगार कर रहा है लेकिन मन में क्या चल रहा है, खुद की स्तुति के लिए चल रहा है। तो ये बहुत ही जैसे एक सूक्ष्म रेखा है कार्यों के बीच में कि जिसको जानना हर एक व्यक्ति विशेष पे निर्भर रहता है। मैं नहीं कह सकता कि भाई ये इंद्रिय तृप्ति है आपके लिए और ये आपके लिए कृष्ण प्रेम के लिए, आपको टटोलना है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं इससे मैं कृष्ण भावना प्रभावित हो रहा हूं या आत्म प्रभावित हो रहा हूं, अपने अपने ही भावों में खो जा रहा है। बाकी आश्रमों में यह बहुत आसान है इसको समझना क्योंकि वहां पर बहुत सारी उलझने नहीं रहती, बहुत सारे कार्यकलाप करने नहीं पड़ते। एक गृहस्थ आश्रम ही ऐसा आश्रम है कि जहां पे ये सारी उलझने आ जाती है और बहुत सारे कार्यों में आपको लगना पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि ये अंधकूप के समान है उनके लिए जो गृह में भी है, क्योंकि एक बार अंदर अंधे कुएं में कोई गिर जाता है तो बाहर आना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो गृहस्थ है वो अगर इसे स्वीकार लेता है कि ये मेरे शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है, इसलिए भगवान ने मुझे दिया है, क्योंकि ऐसे कुछ मैंने कर्म किए हैं कि जिनके कारण इन भोगों को मुझे भोगना ही है और भोग के मेरी मुझे शुद्धि करवानी है, चाहे वो सुख हो या दुख हो, उनका हिसाब किताब मुझे अभी पूरा करना है, और उस भावना से उसको वो ग्रहण कर लेता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति बाहर निकल सकता है और आगे जाके सोचता है कि भाई जैसे कल ही नवयोगेंद्र महाराज बता रहे थे, एक सन्यासी है लंदन में कृष्णदास स्वामी करके, उनके बारे में, उनकी तो इच्छा नहीं थी विवाह करने की, लेकिन माता पिता के अनुरोध से उन्होंने विवाह किया, लेकिन पहले उन्होंने बोल दिया कि मैं आयु के 50 साल में या 50 साल तक ही मैं ये गृहस्थ धर्म का पालन करूंगा और जैसे ही 50 हो जाएगा मैं संन्यास ले लूंगा, अगर आप इसके लिए राजी है तो मैं विवाह करता हूं। तो उनके नाना नानी थे, एक्चुअली माता पिता नहीं थे, नाना नानी ने उनको बड़ा किया था, तो बोले ठीक है तब का तब देखा जाएगा, अभी कर तो लो। तो बोले देखो वैसा है तो मैं कर रहा हूं, बोले हाँ ठीक है चलो हमें मानिए, कम से अभी शादी तो कर लो, विवाह कर लिया उन्होंने। और जैसे ही 50 साल के हो गए अपनी पत्नी को उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं, मैं संन्यास ले रहा हूं, तो पहले से उन्होंने फिक्स किया था कि मैं इसमें गिर रहा हूं लेकिन बाहर निकलने के लिए, ऐसा नहीं कि इसमें पूरा जिंदगी निकालना। और आज लंदन में वो प्रचार कर रहे बहुत अच्छी तरह से। तो व्यक्ति को पहले ही निर्धारित करना चाहिए कि क्या करना है, इसमें अटके रहना है बाहर निकलना। और यहां पे भी आगे जाके हम देखेंगे, ये अपने देवावती को बताते, पत्नी को बताते करलमणि, तो जिस दिन तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी उस दिन मैं ग्रह का त्याग कर दूंगा। पति और पत्नी ये दोनों शब्दों का अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है। निरुक्त के अनुसार पति यानी पाति सह, पाति यानी जो संरक्षण देता है, जो अपनी पत्नी और उसके ऊपर निर्भर जो भी है, जैसे सप्तपदी होती है विवाह में, तो हर एक सप्तपदी पे वो जो पति रहता है अपनी पत्नी को अनुरोध करता है कि पहले कर्म तुमने डाला है तो तुम मेरे जीवन में शक्ति लेके आओ, कि जिस शक्ति के द्वारा इस गृहस्थ धर्म के कर्तव्यों का हम पालन करें। वो राजी होती है तो फिर दूसरे पद में पूछ लेता है उसको कि तुम एक ऊर्जा का स्वरूप बन के मेरे जीवन में आओ, ताकि जो मेरे कार्य है उन कार्यों को मैं सचेतन भाव से कर सकूं। तीसरा बोलता है कि तुम इस प्रकार से व्यवहार करो कि मेरे घर में जो भी है, माता पिता या जो भी बंधु भगिनी है या जो भी जीव है, प्राणी है, पशु है, तुम इस प्रकार से व्यवहार करो कि उन सारे लोगों की तुम साम्राज्ञी बन जाओ, यानी अपने कार्यों से अपना मन इस तरह से जीत लो कि वो अपने आप तुम्हारे मन के या तुम्हारे विचारों के अनुरूप चले। ऐसे करके सारे हर एक पद पे वो अपने पत्नी से आवाहन करता है इन चीजों के लिए, और जब वो राजी होती है तो फिर वो सप्तपदी पूरी होती है। ऐसा नहीं कि कोर्ट में गए साइन मारी और हो गई शादी, ये नहीं है। विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है कि जो व्यक्ति को कई बंधनों से मुक्त कर देता है, और इस रूप से इस भाव से अगर किसी स्त्री को किसी ने अपने जीवन में स्वीकारा है तो उसको पत्नी कहा जाता है। पत्नी यानी पत्ना त्रायते सह, जो उस व्यक्ति के शील तथा यानी जिसको चारित्र कहा जाता है और साथ ही साथ अध्यात्म, इन दोनों चीजों में जहां पे उसका पतन होने वाला है वहां से उसको जो बचाती है उसको पत्नी कहा जाता है। और कई शब्द है पत्नी के लिए, जैसे भार्या कहा जाता है, भार्या यानी जो भरण पोषण करती है, धारा, धारा भी कहा जाता है उस स्त्री को कि जो घर का या कुटुंब का विच्छेद कर देती है, अगर ज्वाइंट फैमिली हो तो उसको न्यूक्लियर बना देती है, उसको धारिया धारा कहा जाता है। आजकल तो पत्नी और भार्या बहुत ढूंढ के भी नहीं मिलती है, धारा ही मिलती है सब, जो पूरे घर का सत्यानाश कर देती है। अगर कोई भगवान के पास जाके प्रार्थना करता है, विशेष रूप से ये जो यहाँ पे श्लोक दिया है रुक्मी माता जो भगवान को इस सृष्टि का पहला लव लेटर था, वो जहां पे खुद बोलती कि भगाओ करके, तो वहां पे वो भगवान से प्रार्थना करती कि इस गुणों से युक्त आप है इसलिए मैं आपकी शरण ले रही हूं। तो कई टीकाकार कहते हैं कि अगर यही प्रार्थना कोई व्यक्ति अगर विवाह करने से पहले भगवान को करे तो भगवान उसको अनुरूप पत्नी दे देते हैं जो उसके पतन से उसको बचा सके। इसलिए देखते हैं महाराष्ट्र में भी एक प्रथा है, अगर किसी लड़की का विवाह ना होता हो तो उसको रुक्मिणी हरण पढ़ने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि कम से कम भगवान से प्रार्थना तो करे तो भगवान अच्छा सा कोई भेज दे, राधा रामधर भगवान की। तो ये आवश्यक है, इंद्रिय तृप्ति का भी मन में विचार हो तो उसके लिए अगर भगवान से प्रार्थना करे तो उस विचार को भगवान शुद्ध कर देते हैं। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषोत्तम। अग्नि के पास जाओगे चाहे वो गीला ही क्यों ना हो, थोड़े समय के बाद वो भी भस्म हो जाता है। तो किसी भी भाव से भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो हमें जो आवश्यक है उन चीजों को देखकर भगवान हमें बचा लेते हैं। तो ऐसा कभी सोचना भी नहीं चाहिए, खास करके हमारी संस्था में हम देखते हैं कई लोग ब्रह्मचर्य बन जाते हैं और बाद में अगर उनका विचार बदल जाता है गृहस्थ बनने जाते हैं तो लोग उसकी तरफ ऐसे ऐसे दृष्टि से देखते हैं कि जैसे पूरा पतित हो गया, क्या काम से। लेकिन जो है वो समझ नहीं पाते कि भाई उसके गुण जो वो कर रहा है उसके लिए अनुरूप हो तो उसको करने दो, उसमें क्यों बाधा है ना, क्योंकि भगवान ने वर्ण और आश्रम इसीलिए बनाया है कि इस प्रकार के जीव इस संसार में है। ऐसे नहीं कि सब ब्रह्मचारी या सब सन्यासी रह सकते हैं, जिसके लिए जो उचित है वो भगवान ने दिया है तो उसको वो ग्रहण करने दो। और ये न कि प्रकार है ना मन कृष्ण निवेश है, अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना है। तो हर एक के कार्य अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर मन को भगवान की सेवा में लाने की विधि को अपने जीवन में अपना लेता है तो जीवन परिपूर्ण कर सकता है। और इसलिए इसकी शुरुआत ही देखिए आप, जहां से भगवान की लीलाओं का वर्णन शुरू हो जाता है वहां पर पहले गृहस्थ धर्म के बारे में ही बताते, क्योंकि यही एक आधार है सारे जीवात्माओं के लिए कि वो अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करें। ये गृहस्थ के ऊपर है कि वो किस जीवात्मा को अपने विचारों से इस धरती पर जन्म लेने के लिए आकर्षित करता है। जब बच्चों को पैदा किया जाता है तो ऐसा नहीं कि कुत्ते बिल्लियों जैसे उनको पैदा करना है, वो तो वो कर रहे हैं कुत्ते बिल्लियां। अगर मनुष्य को प्रजोत्पादन करना है तो उसको सोचना है कि भाई ये जो मैं जीव को बुला रहा हूं इसकी मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं कि उसको इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुझे बाहर निकालना है। और केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए केवल मुझे मैथुन करना है तो फिर वो अन्य पशुओं पंछियों का जीवन ठीक है, वहां पे वो जिम्मेदारी नहीं रहती उनकी, क्योंकि उसके बारे में ज्ञान नहीं रहता। लेकिन गृहस्थ धर्म में ये गृहस्थोचित कार्य भी है, इसलिए इसको एक संस्कार कहा गया है, गर्भधान संस्कार, कि जिसके द्वारा एक ऐसे जीवात्माओं को आप आकर्षित कर रहे हो कि जो आपके भक्ति जीवन में भी आपको मदद करे। असत सैन्य ना बने, ताकि वो अपने माता पिताओं को पुत्र पुत्र बने, पूनम नरक स्त्रायते, जो अपने माता पिताओं को पूनम के नरक से बचा सके, नहीं तो मूत्र कहा गया उसको, दोनों एक ही जगह से आते हैं। तो गृहस्थोचित कार्य, सारे संस्कारों की शुरुआत विवाह संस्कार के बाद गर्भाधान संस्कार बनाया गया। अगर विवाह संस्कार उचित रूप से हुआ है, पूरी तरह से सोच समझ के किया है, तो अगला संस्कार भी है तो व्यक्ति वो सोच समझ के करेगा। आजकल विवाह करने की पद्धति ऐसी कि केवल माँ बाप को अपने पैसे का आडंबर करना है और बच्चों को शैतानी करनी है, उसका एक पवित्र जहां मांगल्य कुछ रहता है वो आजकल कहीं पे आपको दिखाई नहीं देता। अपनी प्रतिष्ठा के लिए सारा लेन देन वही होता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप लोग गए भी होंगे, कितने सारे विवाह भी अपने अटेंड किए होंगे, कभी सीरियसली देखा है कि जो जो विधि चल रही है क्या वो शास्त्रों के प्रमाणों के अनुसार चल रही है? हर एक मुहूर्त पे उन नक्षत्रों पे वो चीज होनी चाहिए, अगर वो ना हो तो उसके बहुत गलत परिणाम उत्पन्न होते हैं। और आजकल तो टाइम एडजस्टमेंट ऐसी हो, मेकअप के लिए 3 घंटा डालेंगे लेकिन मुहूर्त पे समय पे नहीं आएंगे, अरे आज का है ना कभी भी डालेंगे हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। मांगल्य धारण करना, कुमकुम धारण करना, यह हर एक के लिए एक उचित मुहूर्त रहता है। अगर इन चीजों, ये जो छोटे छोटे डिटेल्स, इनके बारे में अगर व्यक्ति सोचेगा नहीं और वो करेगा नहीं, तो उसके परिणाम सदृश बाकी चीजों को भुगतना पड़ेगा। एक अच्छा गृहस्थ ही है कि जो अच्छे ब्रह्मचारी को पैदा कर सकता है। जैसे हमारे एक ब्रह्मचारी है, आप लोग सब जानते हैं उनको, भागवत का बड़ा पंडित है और श्लोक तो ऐसे धुआंधार छोड़ देते जैसे बरसात हो रही हो। गौरांग प्रभु जब वे माँ के गर्भ में थे, उनकी माता हर रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करती थी, तो बचपन से उस व्यक्ति में वो श्लोकों के प्रति या भगवान की स्तुतियों के प्रति सहज साधारण आकर्षण है। एक बार पढ़ ले उस व्यक्ति को बाय हार्ट हो जाता है, क्योंकि उसी प्रकार के जीवात्मा उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं ना। हमारे पड़ोस में एक थे, वो जो प्रेग्नेंट थी तो एक सीरियल लगता था पहले शांति करके, वो देखा करती थी, और वो सीरियल में टेंशन के सिवा दूसरा कुछ था ही नहीं। वो बच्चा जब पैदा हुआ ना तो वो चेहरा पूरा ऐसा ही था उसका, क्योंकि वो दिन भर वैसे ही, और वो मेगा सीरियल था तो हर रोज रहता, तो वैसे वो देखा करते थे पूरा। कम से 5 साल होने तक वो वैसा ही था, उसमें कुछ वो बच्चे में हंसने नाम की चीज नहीं थी, रोता नहीं था हंसता नहीं था, ऐसा ही था पूरा। वो प्रवाह होता, संस्कार होते हैं। तो गृहस्थ होना या नहीं, इतना आसान चीज भी नहीं है। गृह में भी होना आसान है, बस शादी करो और जो करना है आपको करो, फिर लाइसेंस मिल गया। लेकिन गृहस्थ होना तो बहुत कठिन चीज है। गृह स्थित पत्नी, अपने पत्नी के साथ गृह में जो रहता है, और गृहस्थ उसको कहते हैं चाणक्य पंडित जिसको पुत्र है, क्योंकि वही गृहस्थ को उसके कर्मों से बाहर निकाल सकता है। तो हर एक कार्य बहुत सोच समझ के करना है, अन्यथा मुश्किल हो जाएगा। और यहां पे बताते हैं कि पत्नी का कर्तव्य है कि वह गृहस्थी के सारे कार्यों को संभाले, न कि पति से स्पर्धा करे। आजकल लव मैरिज के कारण लोग 1-2 साल बड़ी भी हो तो चलता है, उसमें क्या है, और सेम आयु की हो तो भी चलता है। तो शुरुआत ही ऐसी हो जाती है कि पति के प्रति रिस्पेक्ट नहीं होता, मैं तू से ही, तू तू मैं से ही शुरुआत शुरू हो जाती है, नाम से बुलाना शुरू कर लेते हैं। मनुस्मृति में कहा है कि कोई पत्नी अपने पति को नाम से बुलाती है तो उसके आयु कम हो जाती है। और आजकल तो क्या, हम एक घर पर गए थे डोनेशन लाने के लिए, तो बहुत बड़ा व्यक्ति था, गए तो उसकी पत्नी पहले थी, क्योंकि कलयुग स्त्री प्रधान होने के कारण घर के सारे निर्णय जो है स्त्रियां ही लेती है, तो सबसे पहले वही आई सामने, तो बैठी और शुरू हो गया। तो उसके बाद उसने बोली ठीक है हम दे देंगे।
अरे रामू तो चेक गए उन्हें।
हम सोचे शायद सेक्रेटरी होगा या, तो बाद में देखा कि रामू सूट बूट में नीचे आ रहा है चेक लेके आया। हम सोच रहे थे रामू क्यों नहीं है अभी तक, तो मालिक आ गया। बाद में देखा यही रामू है करके। और उसकी एज क्या थी मालूम है आपको? 56। बूढ़ा था बेचारा। तो ये स्थिति है, ना तो आदर रहता है और समान आयु के होने के कारण एक स्पर्धा की ये रहती है। आपको तो मालूम है आपके एक लंदन के गॉड ब्रदर, मृदंग बजाने की स्पर्धा, उसके कारण दोनों में झगड़ा, डिवोर्स तक चला गया। तो इसलिए यहां पे बताया गया कि पत्नी का कर्तव्य है कि वह गृहस्थी के सारे कार्यों को संभाले, न कि पति से स्पर्धा करे। जहां पे स्पर्धा का भाव आया यानी वहां सुपीरियरिटी आ गई, और सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी आ गई तो कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाएगा। तो प्रेम नाम की चीज तो हो ही नहीं सकती। स्पर्धा में प्रेम होता है कभी? फिर आगे बताते हैं कि उनको अपने पति की तब तक सहायता, सॉरी जब वो तब तक सहायता नहीं कर सकती जब तक वो आयुशील और गुण में उस व्यक्ति के समान ना, उसका चरित्र उसके गुण जब तक पति के समान ना हो तब तक संभव नहीं कि वो अपने पति की अच्छी तरह से अनुरूप सेवा कर सके। और पति का भी महत्व यह है कि वो विरक्त रहना चाहिए। इसी को ही भगवान कहते कि पानी में रहो लेकिन गीले ना हो। सब कुछ करो लेकिन ऐसे विरक्त भाव से कि एक दिन इनको छोड़ना है। जैसे ट्रस्टी रहते हैं, मराठी में क्या कहते हैं ट्रस्टी को? विश्वस्त। विश्वस्त माने कितना वजन है देखो इस शब्द को। विश्वस्त आपके ऊपर विश्वास रखा है और आपको दिया है। तो भगवान ने आपको विश्वस्त बनाया आपके कुटुंब का। और ट्रस्टी क्या करता है? पूरा एंजॉय करता है खुद ही? आजकल तो करते हैं, लेकिन उस शब्द के अर्थ के अनुसार वो क्या करता है? अपनी जान जाए पर उसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी ले लेता है, उसको संभालता है, क्योंकि उसको मालूम है उसके ऊपर किसने विश्वास किया। तो आपके कुटुंब के उद्धार के लिए भगवान ने आपके ऊपर विश्वास रखे ये दिया है। तो आप सोचो कि आपको करप्टेड ट्रस्टी बनना है या ऑनेस्ट ट्रस्टी बनना है? करप्टेड बनना है तो गृहमेदी बन जाओ, ऑनेस्ट बनना है तो गृहस्थ बन जाओ। और इसलिए नौवें स्कंध में, हाँ नौवें में ही बताते हैं कि तब तक माता पिता राजा गुरु देव अपने आप को ये सारी संज्ञाएं नहीं लगा सकते जब तक वो पूरी तरह से उनके ऊपर निर्भर होने वाले व्यक्तियों को जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा नहीं पाता। तो माता माता नहीं है, पिता पिता नहीं है, राजा राजा नहीं है, गुरु गुरु नहीं है। गुरु ने ऐसे गुरु यानी ऐसा ब्रांड नहीं है, सील नहीं कि चलो ठप्पा मार लिया, मैंने दीक्षा ली उन्होंने दे दी काम खत्म। महाराज की तरह मालूम नहीं यार होंगे कहीं पर, ना महाराज को चले की पड़ी है ना चले को महाराज की पड़ी है, ना बच्चों को पिता की पड़ी है ना पिता को बच्चों की पड़ी है। ये पशु संस्कृति है। मानव संस्कृति वो है कि जहां पे जिसके साथ आपका संबंध है उसके साथ उसके प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारी है और उसका एहसास होना और उसके अनुरूप अपने कार्य करना, उसको मानव समाज कहा। प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद यहां पे बताते हैं कि मनुष्य का गृहस्थोचित कार्य केवल इंद्रिय तृप्ति नहीं वरन पत्नी संतानों के साथ रहते हुए आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना है। वही तो आपके सब परिकर है ना, कि जिनके साथ रहोगे अगर वही आध्यात्मिक जीवन में आपको मदद न करेगी तो फिर आप कैसे प्रगति कर पाओगे। प्रॉपर क्या करते थे, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। दान जो देना है खुद से, घर से देना शुरू करो पहले, घर वालों को संतुष्ट करो। तो प्रचार ही करना है ना, घर से शुरू करो, पहले अपने आप को अच्छी तरह से प्रचार करो ताकि आपके आजू बाजू वाले सुधर जाए, आपका रहन सहन देख के अपने आप लोग बदल जाए। मैं अपने जीवन की बात करता हूं, मैं शुरू शुरू में जब आया नया आश्रम में रहता था ब्रह्मचारी था, तो बड़ा फैनेटिक था और माता पिता को फोर्स करता था, ये नहीं ये करो वो करो वो करो। 7 साल लगे, कुछ फर्क नहीं पड़ा उनमें। बोले तू जो कर रहा है ना, पिता तुझे तो सीधा बोल देते, अरे तेरे को मैं पैदा किया, तू मेरे को सिखाएगा, तो क्या बोलोगे आप उनको। फिर बोला चलो जाने दो, आप मेरे बाप हो, मैं आपका बेटा हूं, आप जो चाहे आप मन से करो, जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो। बस करते रहे करते रहे, भगवान की कृपा से दोनों अभी सोना मारा शुरू कर दिया, कुछ फोर्स नहीं कुछ नहीं, अभी अपने आप करना शुरू कर दिया। आपके गौरव नेताई जी वही अभी देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी गंभीरता नहीं दिखाओगे, अपनी स्थिरता नहीं दिखाओगे आपके मार्ग पर, ताकि बाकी कोई स्वीकार नहीं करेगा उन चीजों को। और भगवान स्वयं कहते कि जब इस मार्ग पे आ जाते हो तो जो उचित चीजें भगवान आपको आसानी से दे भी देते हैं, और अनुचित चीजें आपको बिना प्रयास किए हुए छोड़ भी देती है। कई लोगों को लगता है यार ये तो मेरी आदत है, अभी कैसे जाएगी। आप लगे रहो प्रोसेस में, धीरे धीरे वो भस्म होते जाएगा। जैसे कुछ गीली रहती है कुछ सूखी रहती है, जो गीली है थोड़ा टाइम लेंगी लेकिन अग्नि के संपर्क में आके वो भी जल जाएगी इतना ही, लेकिन छोड़ना नहीं अग्नि का संपर्क। तो भक्तों का संग और भगवत कथा और भगवत नाम ये अग्नि सदृश है जो हमारे किसी भी कलमशों को जला के राख कर सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा नो डाउट, लेकिन जला देगा निश्चित रूप से। तो आइए प्रयास करते हैं इन सारे आख्यानों से, इन शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करने का, ताकि प्रभुपाद को जो चाहिए हमसे, क्योंकि हम सब प्रभुपाद अनुग्रह, प्रभुपाद अंकित प्रभुपाद के चरणों का हमें अनुसरण करना है, तो उनको क्या अपेक्षित है हमसे। उन्होंने ये जो संस्था बनाई है जो कि 99% गृहस्थों से ही भरी है, तो वे क्या चाहते हैं उनसे। अगर उनके संस्था में रह के अगर इसमें जुड़ना है तो उनके क्या एक्सपेक्टेशंस है हमसे, वो जान ले उनके ग्रंथों के द्वारा, और प्रयास करें अपने जीवन में उतारने के लिए, क्योंकि वही एक विधि है इस कलयुग के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। कल नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव तिथि था। नरोत्तम दास ठाकुर जो इस गौड़ीय संप्रदाय के एक महान आचार्य है, जिनके कारण महाप्रभु का जो भाव है हम जान पाए हैं, तो बहुत कठिन था। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कहा करते थे, तुमको कृष्ण प्रेम चाहिए, 4 आने में दूंगा मैं से, 4 आने में दे दूंगा। तो बोले कैसे संभव, कृष्ण प्रेम में और 4 आने में। तो बोले एक प्रार्थना और एक प्रेम भक्ति चंद्रिका, उस जमाने में 2 आने में वो किताब आता था। तो बोले 2 किताब ले लो, जो कि नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखे हुआ है। इन्होंने इसमें बहुत सुंदर भजन है, जिसमें जीव प्रार्थना में उन्होंने दिया है भगवान की के सामने कौन सी प्रार्थना हमें करनी है, क्या मांगना है उनके साथ। हम जाते हैं हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, बोले दर्शन लिया, हाँ लिया, क्या किया आपने दर्शन लिया, यानी क्या किया, क्या आपकी इंद्रिया इतनी पात्र है कि वो भगवान को देख सके। देख सकते हैं इन आंखों के द्वारा हम भगवान को। प्रभुपाद का एक प्रवचन सुन रहे थे हम परसों, प्रभुपाद बोलते हैं कोई कहता है कि मैं भगवान को अपनी आंखों से देख सकता हूं, तो बोले पागल है, भगवान को आंखों से नहीं कानों से देखा जाता है बोलते। कि जब तक उनके बारे में सुनोगे नहीं तब तक वो व्यक्ति क्या आपको समझेगा नहीं। जैसे कई बार प्राइम मिनिस्टर भी आपके सामने से चला जाए और आपको मालूम ही नहीं ये प्राइम मिनिस्टर, उसके बारे में कभी सुना ही नहीं, आपको मालूम कुछ होगा ये, आपने कुछ सुना होगा, अरे वो है पगड़ी लगाता है, दाढ़ी है, चश्मा लगाता है, बूढ़ा है, हा? और कभी गलती से वैसे दूसरा कोई आदमी भी सामने आ जाता, अरे ये करके हमें एहसास हो जाता है। हालांकि आंखों से पहले भी उसको देखा है लेकिन सुनने के बाद जब देखते हैं तो ज्यादा कंफर्मेशन हो जाता है। तो बोलते हैं भगवान को अगर आपको देखना है तो कानों से देखो पहले, क्योंकि उनसे सुनने से आप पात्र बन जाते हैं उनको देखने के लिए। इसीलिए श्रृण्वताम स्वगत कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतो अस्ति अभद्राणि विदुनोति सुरत्सता। जब तक हृदय का अभद्र धो के साफ नहीं होता है तब तक भगवान को हम देख नहीं पाते, और वो कैसे होता है, श्रृण्वताम स्वगत कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनता है। तो उनको कैसे देखना है, उनके पास क्या मांगना है, वो प्रार्थना है जो बहुत सुंदर भजनों का ग्रंथ है नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा लिखा हुआ, वो हमें बताता है। और प्रेम भक्ति चंद्रिका ने फिर उस भगवत प्रेम को प्राप्त करने के पश्चात कौन कौन से अनुभव आते हैं उसके बारे में उसमें बताया गया। तो नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे महान आचार्य थे कि महाप्रभु ने उस व्यक्ति में पूरी तरह से अपने प्रेम का आवेश कर लिया था। वे एक राजा के पुत्र थे, संतोष दत्त नामक एक राजा थे, उनके वो पुत्र थे और खेतोरी ग्राम में रहते थे। हालांकि महाप्रभु इस धरातल से अपनी लीला संपन्न करने के पश्चात कई वर्षों के पश्चात उनका जन्म हुआ था, लेकिन महाप्रभु जब उस ग्राम से एक बार जा रहे थे तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे खेतोरी ग्राम की तरफ देख के, नरोत्तम 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 करके। तो लोग सोच रहे थे अभी तो इस गांव में कोई नरोत्तम है नहीं, लेकिन भविष्य में निश्चित रूप से कोई तो आने वाला है जो महाप्रभु का बहुत ही प्रिय रहेगा। और वहां एक पद्मनाभ की नदी थी, उस नदी में महाप्रभु गए, जैसे ही जा रहे थे महाप्रभु नदी का पानी पूरा उनके चरणों की तरफ आ रहा था। तो महाप्रभु ने जब उसमें स्नान किया तो अपना जो प्रेम है पूरा उस नदी को सौंप दिया था, ट्रस्टी करके उसको विश्वस्त बना के उसको वो धरोहर सौंप दी थी और बोला था कि एक दिन एक व्यक्ति आएगा और वो जिस दिन तुम्हें स्नान करेगा उसे ये सौंप देना। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर महाप्रभु ने उनको बोला, नित्यानंद प्रभु ने उनको सपने में दृष्टांत दिया था, बोले जाओ जाके उस नदी में स्नान करो तो महाप्रभु का जो प्रेम है तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर उस नदी में गए, जैसे ही नहाए पहले उनकी अंग कांति जो थी वो श्याम वर्ण थी, और जैसे ही वो नहा के बाहर आए तो उनकी गौर कांति हो गई, उनका भी जो शरीर का तेज था वो महाप्रभु के जैसा ही था, क्योंकि राधा रानी का जो भाव है माधुर्य प्रेम है वो पूरी तरह से उनको प्राप्त हुआ था। और वही वह पहले व्यक्ति है जिन्होंने गौर पूर्णिमा फेस्टिवल शुरू किया खेतोरी ग्राम का, जानवा माता भी वहां पे थी और उसी में पंचतत्व स्वयं प्रकट हुए थे वहां पे कीर्तन के लिए। तो भगवान के भक्तों के प्रेम में इतना आकर्षण रहता है कि भगवान आकर्षित होकर वहां चले आते हैं। और शाम को हम उनके कुछ भजन गाएंगे नरोत्तम दास ठाकुर का, और फिर प्रोग्राम है ना आपका, और फिर नित्यानंद प्रभु का अभिषेक है, ठीक है। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री प्रभुपाद की, श्री नरोत्तम दास ठाकुर की, प्रेम प्रदाता श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की।